राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वा राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है सोते रो आधी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudirai नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्टकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 11 12 13 और 14। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश मंत्रान सुहसु तत् स्नेह शीत शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त पुत्रान् स्मरस्ता दुहितृहृदया भ्रातॄन् स्वसुर्वा पितरो च दीनो गृणा गृहान् मनोज्ञोरुपरि च दांश वृत्तिश्च कृल्या पशुवृत्त्यवर्गान् त्यजेत् कोशस्कृदि वेहमान कर्माणि लोभान् अनुतृप्त काम ओपस्त्यजेहं बहुमन्यमान कथं विरजेत दुरंत मोह कुटुंब पोषाय वियन निजायु न बुद्ध्य तीर्थं विहतं प्रमत्त सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा निर्विद्य तेन स्वकुटुंब राम ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णववंश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिष्टि गौर हरे कृष्णा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभार पीतांबर दारुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने किरात हूणा घ्रपुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवनाख सादय येनये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मे प्रभवैष्णवे नमः प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता च ससतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणाप्रा दुर्भूत्किलास्यत समे ऋषीणा ऋषभ प्रसीदता भुरतेर्महत भी यैमा पुरो विभू निर्मायशेते यदमूष पूरुष भुंतेर्गुणानशो षोडशात्मक सोलंक श्रेष्ठ भगवान वचांसि में। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तापित इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य येतत् पशु भेर नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेष विहीन पशु भेद समाना। शास्त्र में कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च ये चार प्रकार के कार्य पशु करते हैं। आहार का अर्थ होता है भोजन करना, निद्रा का अर्थ होता है सोना, भय का अर्थ होता है डरना और मैथुन का अर्थ होता है संभोग करना। ये चार कार्य पशु करते हैं और मनुष्य भी ये चार कार्य करते हैं। पशु और मनुष्य दोनों ये चार प्रकार के कार्य करते हैं तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? भगवान ने मनुष्य को विशेष बुद्धि दी है, वो है बुद्धि। विशेष चीज है बुद्धि। धर्मो ही एको अधिको विशेष, जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। एक पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता, मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। और धर्म का पालन करने के लिए ही भगवान ने यह मनुष्य जीवन दिया है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके धर्म का पालन करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य जीवन प्राप्त करके धर्म का पालन नहीं करता है, तो मनुष्य रूपेण मृगार चरंती, वे मनुष्य के रूप में पशु है। तो धर्म का पालन करना चाहिए, और धर्म का पालन बचपन से ही करना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को यह उपदेश दे रहे हैं कि हे मेरे प्रिय मित्रों, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन कौमार अवस्था से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। कुछ लोग संसार में कहते हैं कि यह भजन और भक्ति करने के लिए यह जवानी की उम्र नहीं है, भजन और भक्ति तो बूढ़े होकर करना चाहिए। परंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति जवानी से, बचपन से ही करनी चाहिए। तो कुछ मित्रों ने पूछा, क्यों बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन में भक्ति करना बहुत आसान है, क्योंकि बचपन में कोई टेंशन नहीं होता है कुछ धंधा बिजनेस इत्यादि का। परंतु जैसे ही व्यक्ति बड़ा हो जाता है, तो भक्ति करना बहुत मुश्किल है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कथम प्रियाया अनुकंपिताया। हे मेरे प्रिय मित्रों, आज आप सब लोग छोटे बालक हो, परंतु जैसे आप बड़े हो जाओगे तो अनुकंपिताया प्रियाया, तो एक सुंदर स्त्री के साथ तुम्हारा विवाह होगा। और विवाह करके जब वह पत्नी को घर पर लाओगे, तो वह पत्नी के ऊपर अनुकंपिताया बहुत दया आएगी, और उस पत्नी के ऊपर दया आकर, दया प्रकट होकर आप उसकी सेवा करोगे। वास्तव में स्त्री जो है एक दया का पात्र है। स्त्री के ऊपर स्वाभाविक दया आ जाती है, क्योंकि स्त्री का बहुत बड़ा समर्पण होता है। आप देखते हो, जब किसी स्त्री का विवाह होता है, तो जिस कुल में वह जन्म लेती है, संस्कार लेती है, खाती पीती बड़ी होती है, उस माता पिता को त्याग कर, अपने स्वजनों को त्याग कर एक दूसरे घर में चली जाती है। बहुत बड़ा समर्पण होता है स्त्री का। और जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यदि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर भगवान के पास, भगवान की शरण कैसे लेनी चाहिए, इसका आदर्श यदि कोई है तो वह स्त्री। स्त्री से यह सीखना चाहिए, अपने माता पिता भाई बहन सबको त्याग कर पति के शरण में चली जाती है। और इसी के कारण पति को स्त्री के ऊपर दया आती है। और यदि दया नहीं आती है तो लाना चाहिए। तो यहां पर कहते हैं प्रियाया अनुकंपिताया, वह जो प्रिया है उसके ऊपर दया आएगी। और दया आकर क्या होगा, संगम रहस्यम। हे मेरे प्रिय मित्रों, प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक हैं, और वे जिसको उपदेश दे रहे हैं वे भी 5 साल के हैं, 4-5 साल के। तो बालकों को उपदेश दिया जा रहा है कि बचपन से ही भजन करना प्रारंभ करो, और इस बचपन से भक्ति नहीं करोगे तो फिर बड़े होकर आपका विवाह होगा, और जब इस प्रकार से सुंदर पत्नी को अपने घर पर लेकर आओगे, तो क्या होगा संगम रहस्यम, उसके साथ एकांत में बैठकर रहस्य की बात करोगे। जब एकांत में एक कमरे में तुम और तुम्हारी पत्नी बैठोगे तो कब तुम्हें भगवान याद आएंगे। और इतना ही नहीं, रुचि रांस मंत्रा और वह तुम्हारी जो पत्नी है वे बहुत मीठी मीठी वाणी से आपके साथ बातें करेगी, आपको मंत्रणा देगी। और निश्चित रूप से इस संसार में जो पति होते हैं अपने पत्नी की बात बहुत रुचि से सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। संसार में और सभी की बात ध्यान से सुने या ना सुने, परंतु अपने पत्नी की बात तो ध्यान से सुनते हैं। और कुछ लोगों को नहीं सुनना है फिर भी सुननी पड़ती है। बिल्कुल ध्यान से। और जो लोग भक्ति में आ गए हैं उसे इंटरेस्ट नहीं होता है ध्यान से सुनने के लिए, परंतु ड्रामा करना पड़ता है। लेकिन ध्यान से सुनना है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ध्यान से सुनते हैं। तो किसी स्त्री के साथ विवाह होगा, अकेले कमरे में बैठकर तुम दोनों बातें करोगे और उस मीठी मीठी बातों में वह तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हें मंत्रणा देगी, तब कहां तुम्हें भगवान याद आने वाले हैं। और कैसे तुम उस पत्नी को छोड़कर भक्ति कर सकते हो, नहीं हो सकता है। और इतना ही नहीं, विवाह जब हो जाएगा तो सुहेत सुतत्स्नेह, तो पहले तो तुम्हारे फैमिली में केवल तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे भाई थे, लेकिन विवाह करने के बाद कुटुंब बढ़ जाता है, फिर तो ससुर के साथ संबंध बढ़ता है, सास के साथ, साली के साथ, साले के साथ, और साधु भाई भी बन जाते हैं। तो कहते हैं सुहेत्सु, तो उसके साथ संबंध निभाते निभाते बहुत समय बीत जाएगा। संसार में देखा गया है लोग अपने भाई से प्रेम नहीं करते, उससे कर भाई से करोड़ों गुना प्रेम अपने साधु भाई से करते हैं। सुहेत्सु स्वाभाविक प्रेम होता है, और किसी को प्रेम नहीं होता है तो करना पड़ता है पत्नी के डर से। भूल से भी मुंह से निकल गया साले के बारे में या सास ससुर के बारे में तो फिर सुनवाई हो जाती है। तो इस प्रकार से संबंध बढ़ते जाते हैं पत्नी के साथ, पत्नी के माता पिता के साथ, और जब पत्नी के साथ कुछ साल बीत जाता है तो फिर बच्चे होते हैं। सुहे सुतस्नेह शीत शिशुना, और बच्चे जब बड़े होते हैं और अपनी तोतली भाषा में मम्मी और पापा कह के बुलाते हैं तब उसमें बहुत आनंद आता है। जो आनंद बड़े बड़े विद्वान और पंडितों की वाणी में नहीं है उसे कई गुना आनंद बच्चों की तोतली बोली में आता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं पत्नी आएगी, पत्नी के साथ बातें करने में, अपने स्नेही स्वजनों के साथ समय बिताने में और बच्चों का पालन पोषण करने में, बच्चों के साथ आनंद लेने में कहां से भगवान याद आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं बचपन से ही भजन करना प्रारंभ करो। इतना ही नहीं, पुत्रान स्मरणस्ताम दुहित हृदया, और वे जब तुम्हारे पुत्र बड़े होंगे और दो तीन पुत्री भी होगी, ऐसा नहीं है कि केवल पुत्र ही होते हैं, पुत्री होगी और पुत्र पुत्री के प्रति माता पिता का स्वाभाविक प्रेम होता है। और जब उस पुत्री का विवाह हो जाता है, विवाह हो जाने के बाद उनके माता पिता बहुत स्मरण करते रहते हैं कि हमारी जो पुत्री है वे दुखी तो नहीं होगी। स्वाभाविक, माता पिता का पुत्री के प्रति बहुत प्रेम होता है, क्योंकि पुत्री जो होती है माता पिता की बहुत सेवा करती है। पुत्र इतना सेवा नहीं करते हैं जितनी पुत्रियां करती हैं। विवाह हो जाने के बाद भी जब पुत्री को पता चले कि हमारे माता पिता दुखी हैं या बीमार हो गए हैं तो अपने पति को छोड़कर अपने माता पिता की सेवा करने के लिए आती है। इसलिए माता पिता का स्वाभाविक प्रेम पुत्री के प्रति होता है। तो पुत्र होंगे, पुत्री होंगी, और उस पुत्री को याद करते करते शोक करते रहोगे, कहां से भगवान याद आएंगे। इतना ही नहीं, भातृन स्वसुरवा पितरोच दीनो, फिर अपने भाई बहन इत्यादि को भी आपको देखना होगा, और अपने पुत्र संतानों का पालन करते करते पितरोच दीनो अपने माता पिता की भी सेवा करनी होगी। दीनो, दीन का अर्थ होता है बूढ़े माता पिता। व्यक्ति अपने संतानों का विवाह कराता है तब तक उनके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी भी सेवा करनी पड़ती है। सोचते हैं कि यह मेरे पुत्र का विवाह करा दूंगा, बाद में भजन भक्ति करूंगा, तब तक तो माता पिता बूढ़े हो गए, अब उसकी सेवा करो। तो पत्नी की सेवा, पुत्र की सेवा, समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, और यह करते करते गृहान मनोज्ञो रूप रूपरीच दांश रुतिश कुलिया पशुभूत्य वर्गान। और उसमें भी यह गृह में रहते रहते जिस घर में रहा जाता है, जिस घर में रहते हैं, उस घर के प्रति बहुत आसक्ति बढ़ जाती है। घर में सुंदर फर्नीचर बना देते हैं, बहुत सुंदर फ्लोरिंग होता है, तो घर में रहने वाला जो गृहस्थ है, उस गृहस्थ की अपने घर पे बहुत आसक्ति होती है। वे घर छोड़कर 3-4 दिन के लिए बाहर जाता है, तो बाहर जाकर यही सोचता है कब जाकर मैं घर में रहूंगा। तो घर में आसक्ति होती है, और इस प्रकार घर में आसक्ति, पत्नी में, पुत्र में, इस समाज में, सब में आसक्ति रखते हुए व्यक्ति धीरे धीरे यह सारा जीवन बीत जाता है और उसकी मृत्यु आ जाती है, मर जाता है बेचारा, भजन नहीं कर सकता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, जैसे दृष्टांत देते हैं, त्यजेत कोशस्तु दिवेह मान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम। जैसे रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा आप जानते हैं, रेशम का कीड़ा जब अपना घर बनाता है तो अपने ही मुख से ग्रंथि निकालता है, अपने ही मुख से ग्रंथि निकालकर अपने आजू बाजू में अपने घर का निर्माण करता है, और अपने घर का निर्माण करते जाता है, करते जाता है, करते 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 वह ऐसा घर बना देता है कि उस घर में एक द्वार भी नहीं छोड़ता है बाहर निकलने का। प्रहलाद महाराज दृष्टांत देते हैं कि यह व्यक्ति अपनी ही बुद्धि से विवाह करता है। ब्रह्मा जी कहने के लिए नहीं आते कि आप विवाह कर लो। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही लिए, अपने ही इंद्रियों से घर बनाता है, वैसे व्यक्ति अपनी ही इच्छा से विवाह करता है, और विवाह करता है, पुत्र करता है, साले ससुर माता पिता की सेवा इत्यादि झमेले में ऐसा फंस जाता है, ऐसा फंस जाता है, जिसे रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है, बहुत तड़पता है, अपनी पांख फड़फड़ाता है बाहर निकलने के लिए, परंतु वह घर ऐसा बना देता है उसके बाहर नहीं निकल सकता है। इस संसार में हमारे ही द्वारा हम ऐसा बंधन निर्माण कर देते हैं कि उस बंधन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति चाहे भी, इस संसार में कुछ लोग जानते हैं कि भगवान की भक्ति करना ही मनुष्य जीवन का सार है, जानते हुए भी भजन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने ही आजू बाजू में अपने ही द्वारा जाल बना कर रख देते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जाल बनाइए, जाल बनाने के लिए कोई ना नहीं है, विवाह कीजिए, विवाह करने के लिए प्रहलाद महाराज ना नहीं कह रहे हैं, परंतु विवाह करने में, इस झमेले में फंसने में यह ध्यान रखिए कि इस झमेले से निकलने के लिए एक द्वार, एक दरवाजा छोड़ दीजिए। जैसे रेशम का कीड़ा अपना घर बनाता है तो उसमें एक द्वार छोड़ना चाहिए जिससे बाहर निकल सके। कम से कम सोमवार को तो इस झमेले को छोड़कर यहाँ भागवत कथा सुनने के लिए आ सके, और साल में एक बार इस झमेले से निकलकर वृंदावन या मथुरा भगवान के धाम में जा सके। कम से कम एक द्वार या एक खिड़की छोड़ देनी चाहिए, फंस नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये पुत्र पत्नी या संसार किस लिए है? पुत्र पत्नी और संसार इसलिए होते हैं
ताकि भगवान की भक्ति अच्छी तरह से कर सके। संसार में चार प्रकार के वर्ण और आश्रम है, चार आश्रम, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी। तो ब्रह्मचारी गृहस्थ क्यों बनता है? क्योंकि भगवान की भक्ति करने में उसे हेल्प मिले। परंतु विवाह करने के बाद भक्ति में हेल्प करने की बात तो दूर ही, भक्ति का ठिकाना ही नहीं रहता है। विवाह के पहले हो सकता है थोड़ी बहुत भक्ति करे, मंदिर में जाता है, भगवान का नाम लेता है, परंतु हमने इसे बहुत दृष्टांत देखे, विवाह के बाद तो वो दिखता भी नहीं है। मंदिर में न तो दिखता है न तो किसी प्रवचन में। विवाह किया था भजन करने के लिए और विवाह करने के बाद भजन छूट जाता है। क्यों? क्योंकि द्वार नहीं छोड़ा है। गृहस्थ जीवन स्वीकार करना चाहिए, गृहस्थ बनना चाहिए, परंतु गृहस्थ जीवन जीने के लिए उस गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है यह सीख लेना चाहिए। इस संसार सागर में पांव रखने से पहले संसार सागर में तैरना सीखना बहुत आवश्यक है। यदि तैरना नहीं सीखे तो डूब जाओगे। तो गृहस्थ जीवन बिताने के पहले ब्रह्मचारी भगवान का भजन बहुत आवश्यक है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे मेरे मित्रों, क्यों आवाज कम हो गई? हे मेरे मित्रों, यही उम्र है भजन करने की, भक्ति करने की। कहते हैं कुटुंब पोषाय वियन निजायु न बुद्धेथम विहतम प्रमत्त सर्वत्र तापत्र य दुखितात्मा निर्विद्यते न कुटुंब राम। कहते कुटुंब पोषाय वियन निजायु, इस संसार में ग्रस्त व्यक्ति अपने कुटुंब को पोषने के लिए वियन अपनी सारी उम्र गवा देता है। गधे की तरह मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक, किसके लिए? पत्नी और बच्चों के लिए। न बुद्ध तीर्थम, व्यक्ति पूरा जीवन अपनी पत्नी और बच्चों और अपने स्नेही स्वजन के लिए बिता देता है, परंतु फिर भी उनके पुत्र और बच्चे उनसे संतुष्ट नहीं रहते हैं। बेचारा व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है लेकिन फिर भी पत्नी और पुत्र की मांगे कभी खत्म नहीं होती है, बढ़ती जाती है, संतुष्ट नहीं होते। और बेचारा बहुत मेहनत करता है फिर भी फल क्या मिलता है? लोग कहते हैं अब तक तुमने कुछ नहीं किया, हमारे लिए तुम कुछ नहीं करते हो। मर जाता है बेचारा गधे की तरह ट्रेनों में लटक लटक कर। ये घर वाले नहीं देखते हैं, ये तो यही कहते हैं ये कुछ नहीं करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं देखो ये समय आएगा, कुटुंब पोषाय नियन निजायु, कुटुंब का पोषण करते करते समय जीवन बीत जाएगा और न बुद्ध तीर्थम विहतम प्रमत्त, और वह व्यक्ति, वह गृहस्थ व्यक्ति एक मूर्ख की तरह अपने घर वालों की सेवा करते करते अपना स्वार्थ भी भूल जाता है। वास्तव में एक जीव का असली स्वार्थ क्या है? स्व का अर्थ होता है हम, और वास्तव में हम कौन है? आत्मा है। तो आत्मा का अर्थ, आत्मा के लिए सबसे बड़ा कार्य है भगवान की भक्ति करना, परमात्मा की सेवा करना। तो व्यक्ति का सबसे बड़ा स्वार्थ है भगवान की भक्ति करना, परंतु कुटुंब पोषा या कुटुंब का पोषण करते करते वे स्वार्थ भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। और सर्वत्र तापत्र दुख की खालात्मा, और वह कुटुंब का पालन करते करने में वे बहुत दुख भोगता है। तीन ताप, त्रिताप, तीनों प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक दुख भोगता है। लेकिन फिर भी न विद्यते स्वकुटुंब राम, लेकिन फिर भी अपने कुटुंब से वो विरक्ति प्राप्त नहीं करता है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। एक व्यक्ति, एक पति अपने पत्नी की, पुत्र की सेवा कर करके गधे की तरह मेहनत करता है और वही पुत्र और पत्नी उसे दुख देते हैं। वास्तव में दुख देने वाले पाकिस्तान वाले नहीं है, दुख देने वाले हमारे घर में ही पड़े हैं। चाणक्य पंडित कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, चाणक्य पंडित कहते हैं शत्रु अरि प्रहरति। ये जो अरि है, शत्रु जो है, वे हमारे शरीर पर वार करते हैं, कभी हाथ या पांव पर वार कर देते हैं, और हॉस्पिटल में जाकर ये हाथ और पांव के जो घाव होते हैं वे रुझ जाते हैं। परंतु स्वजन नस्त हृदयस्तु वा, परंतु जो स्वजन होते हैं, हमारे ही पुत्र और हमारे ही पत्नी जो होते हैं, वे हृदय के ऊपर वार करते हैं, वे घाव कभी नहीं बुझते। सबसे ज्यादा दुख देने वाले हमारे घर में ही पड़े हैं, लेकिन फिर भी ये सब लोग दुख दे रहे हैं, समाज के द्वारा दुख मिल रहा है, मन के द्वारा, सबके द्वारा दुख मिलने के बाद भी व्यक्ति सुबह घर से निकलता है तो शाम को उसी घर पर लौटता है। पता है कि यहां दुख मिलेगा, दुख है, दुख के अलावा कुछ नहीं है, सुख है केवल क्षण भर के लिए, पांच मिनट के लिए, परंतु पांच मिनट के सुख के लिए इतना दुख भोगता है, फिर भी उसे छोड़ नहीं सकता है। क्यों? तो कहते हैं स्वकुटुंब राम निर्वध्यते, क्योंकि लोभ, लोभ के कारण वे अपने कुटुंब को नहीं छोड़ सकता है। उसकी लालसा है कि मैं इस कुटुंब में रहकर ये सब लोगों की सेवा करके सुखी हो जाऊंगा, और वह कुटुंब की सेवा करते करते पूरा जीवन बिता देता है, परंतु वे सुखी नहीं हो सकता है। सेवा करना व्यक्ति का स्वभाव है, बिना सेवा किए इस संसार में कोई नहीं रह सकता है। आप देखिए, एक मूर्ख, एक पागल भी सेवा निश्चित रूप से करता है। कुछ लोग अपने शरीर की सेवा करते हैं, तो कुछ लोग अपने पत्नी की सेवा करते हैं, तो कुछ लोग अपने पुत्रों की सेवा करते हैं, तो कुछ लोग अपने समाज की सेवा करते हैं, समाज सेवा, कुछ लोग देश की सेवा करते हैं, सेवा निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन यह सभी सेवा करने के बाद भी पूर्ण सुख और आनंद नहीं मिलता है। जब तक भगवान की सेवा न की जाए, भगवान की सेवा करने में पूर्ण सुख और आनंद है, जब तक भगवान की सेवा न की जाए तब तक वास्तविक सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की सेवा करें, और भगवान की सेवा करने का नाम ही है भक्ति। प्रहलाद महाराज कहते हैं तो भगवान की सेवा बचपन में करनी चाहिए, प्रारंभ से ही करनी चाहिए, विवाह हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा, नहीं कर पाओगे। इसलिए कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थतम। इसलिए कुमार अवस्था से ही भजन करना चाहिए, नहीं तो अपने कुटुंब में फंस जाओगे। निश्चित रूप से व्यक्ति अपने कुटुंब में बहुत दुख भोगता है, फिर भी अपने कुटुंब से वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता है। मुझे एक कथा याद आ रही है, एक बार स्वर्ग के देवता, 33 करोड़ देवता के राजा इंद्र को श्राप मिला, और श्राप क्या मिला कि इस पृथ्वी में जाकर सुअर बन जाओ। तो स्वर्ग के राजा इंद्र इस पृथ्वी पर सुअर बन गए, क्योंकि राजा थे, राजा का स्वभाव होता है कि शासन करना, तो सुअर की योनि में आकर भी वे शासन करते थे, कई सारे पत्नियों के सुअरी के साथ विवाह किए और उससे कई सारे बच्चे भी थे। तो वे इंद्र सुअर बने और कई सालों तक वहां सुअर की योनि में रहे। जब इंद्र सुअर बन गए तो इंद्र लोक में राज सिंहासन खाली हो गया, और इंद्र स्वर्ग का शासन करने वाला कोई नहीं रहा। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब यहां पर शासन करने वाला कोई नहीं है तो इंद्र को बुला लाओ। तो कई सारे देवता गए इंद्र को बुलाने के लिए, परंतु इंद्र नहीं आए। अंत में ब्रह्मा जी स्वयं आए इस पृथ्वी लोक पर, और इंद्र जो सुअर के शरीर में थे, ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा कि अब चलो स्वर्ग में, तुम्हारा आसन खाली है राज्य करने के लिए, और क्या तुम यह भोग में पड़े हो, यह मल और विष्ठा खाने में तुम पड़े हो, चलो स्वर्ग में, यह अच्छा भोग भोगने के लिए वहां पर, क्योंकि इस पृथ्वी से करोड़ों गुना अच्छा भोग स्वर्ग में है। तब उस इंद्र उस सुअर के शरीर में इंद्र ने इतना ही कहा कि मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकता हूं, क्योंकि आप देखो अभी मेरी कितनी पत्नियां हैं, कितने बच्चे हैं, मैं आपके साथ आऊंगा तो ये पत्नी और बच्चों का क्या होगा। अब ये हालत हमारी है। भगवान के धाम का, भगवान की भक्ति का परम सुख परम आनंद को छोड़कर हम इस झमेले में फंसे हैं, अंधकूप में गिरे हुए हैं। वास्तव में इस झमेले में फंसना यह गृहस्थ ही एक कुआ है यदि ठीक से जीने न आए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गृहस्थ में नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए, परंतु रहने का भी तरीका होता है। और यदि भगवान यदि गृहस्थी में रहकर भजन नहीं किए तो यह अंधकूप अंधेरा कुआ है, और इस संसार में प्राय सब लोग इस कुएं में गिरे हुए हैं। लेकिन भगवान के कुछ भक्त इतने कृपालु होते हैं कि इस कुएं में गिरे हुए लोगों को रस्सी डालकर बाहर निकालते हैं कि आइए आइए हमारे मंदिरों में आइए, सोमवार को प्रवचन में आइए और अपने जीवन को इस कुएं से बाहर निकालिए। लेकिन दुर्भाग्य है उस जीव का, उस कुएं में फंसने वालों का, कि इतना इतना प्रचार करते हैं, बुलाते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी वे उस रस्सी को पकड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसे उस अंधकूप में ही पड़े रहना है, तब पड़े रहो, क्या कर सकते हैं। अब जो इस कुएं में ही पड़े रहना चाहता है उसे ब्रह्मा जी भी आ जाए तो वो कौन बाहर नहीं निकाल सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूखे हुए पेड़ के ऊपर, सूखे हुए लकड़े के ऊपर अमृत भी डाला जाए तो उस पर फूल और पौधा नहीं आ सकता है, ठीक उसी प्रकार जो मूर्ख है, जो गृहस्थ में आसक्त है, ऐसे व्यक्ति को समझाने के लिए ब्रह्मा जी भी आ जाए नहीं समझेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो स्वर्ग में इंद्र को नहीं है। तो कुटुंब पोषाए, कुटुंब का पोषण करने में इतना आसक्त नहीं रहना चाहिए, कर्तव्य के रूप में कुटुंब का पोषण कीजिए, परंतु साथ साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं बहुत मुश्किल है यह गृहस्थ जीवन के कर्तव्य निभाना, पत्नी पुत्र ये सभी के प्रति कर्तव्य होता है, इसके साथ साथ भजन भक्ति करना बहुत मुश्किल है, इसलिए विवाह से पहले ही हो सके उतना भजन कर लेना चाहिए। परंतु प्राय यहाँ तो बहुत बड़े लोग विवाह हो, विवाह जिसका नहीं हुआ है वे ध्यान दीजिए, और जिसका हो गया है वे क्या करें। वे तो इतना ही कर सकते हैं कि भगवान को प्रार्थना कीजिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान के भक्तों का संग कीजिए, ताकि भगवान की भक्ति प्राप्त हो, और भगवान की भक्ति भगवान की कथा और भगवान का नाम प्राप्त हो। हरे कृष्णा हरे। तो प्रहलाद महाराज का कहना यह है कि बचपन से ही भक्ति प्रारंभ कीजिए, बचपन से ही भक्ति प्रारंभ करने से वास्तव में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज की शिक्षा दी जा रही है, समय हो चुका है, वैसे ही आज बहुत लेट प्रवचन शुरू हुआ, अगले सोमवार से हम जल्दी प्रारंभ कर देंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कथा सुन सको। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है, भौतिक संसार में मनुष्य दुखी क्यों है। सबसे पहले मनुष्य भौतिक संसार में रहकर कभी सुखी नहीं हो सकता है, ये पहली बात, क्योंकि यह संसार दुख देने के लिए ही बनाया गया है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, मैंने यह संसार का निर्माण दुख देने के लिए किया है। तो सबसे बड़े दुख का कारण हमारा क्या है कि यह भौतिक संसार में हम है, और इस दुखालय जगत में कितना भी प्रयास करो सुखी नहीं हो सकते। जब तक इस दुखालय जगत को छोड़कर भगवान के धाम में आध्यात्मिक जगत में नहीं जाते हैं तब तक दुखी रहेंगे। तो दुख का कारण है भगवान से विमुख है, हम भगवान से विमुख होकर हम इस भौतिक संसार में हैं, और भगवान के पास जब तक नहीं हम जाएंगे तब तक हम दुखी होते रहेंगे। इसलिए हमें हमारा सारा प्रयास भगवान के पास जाने में, भगवान के धाम में जाने में करना चाहिए, और ये जो भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति के द्वारा हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। भगवान की भक्ति का अर्थ है भगवान का नाम लेना और भगवान की कथा सुनना, ठीक है। और कोई प्रश्न है? बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान की भक्ति करने से, भगवान के शरण में जाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर विष्णु पितामह और ये लोगों को क्यों भोगना पड़ा? ये सत्य बात है, भगवान की शरण हम ग्रहण करते हैं तो भगवान की शरण ग्रहण करने से पहले जितने भी पाप हमने किए हैं ये सब क्षमा हो जाते हैं, शमन हो जाता है। परंतु भगवान की भक्ति में आने के बाद यदि हम पाप करते हैं तो उसकी करोड़ों गुना सजा मिलती है, क्योंकि भगवान की भक्ति में आने से पहले हम जो पाप करते हैं उसे पाप कहा जाता है, परंतु भगवान की भक्ति में आने के बाद हम जो गलत कार्य करते हैं उसे अपराध कहते हैं। और पाप की सजा तो भुगतनी है। अज्ञान में जो पाप हुआ और भगवान की शरण में गए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, परंतु नामनो बलात् यस्य हि पाप बुद्धि, भगवान की भक्ति के नाम पर यदि कोई पाप करता है तो यह तो नाम अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, और इसे भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान के भक्तों को ज्यादा ध्यान रखना है कि हमसे पाप न हो। जो भक्त नहीं है उसे तो केवल पाप लगेगा, परंतु जो भक्त है उसे अपराध लगेगा। आपका प्रश्न होगा पाप और अपराध में क्या अंतर है? 1000 पाप बराबर एक अपराध होता है, 1000 पाप की सजा एक अपराध करने से मिलती है, इतना अंतर है पाप और अपराध। तो ये पितामह भीष्म महाभागवत हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और ये प्रसंग है भागवत में कि पितामह भीष्म जब बाण संहिता पर सो रहे थे, युधिष्ठिर महाराज बहुत संताप कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत सांत्वना दी, समझाया, परंतु नहीं समझे। तब कृष्ण युधिष्ठिर महाराज, पांडव और द्रौपदी को लेकर पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म के पास जब गए, पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर ज्ञान देना प्रारंभ किया, शरीर और आत्मा इत्यादि का। तो जब ज्ञान देना प्रारंभ किया तो द्रौपदी खिरखिराहट हंसने लगी जोर जोर से। पितामह भीष्म ने कहा कि मैं मरने की क्षण में हूं और तुम हंस रही हो। तब द्रौपदी ने इतना ही कहा कि हे पितामह, तुम यहां पर इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हो वेद और शास्त्र का, वह दिन यह ज्ञान आप जो ज्ञान दे रहे हो यह ज्ञान उस दिन कहां गया था जिस दिन कुरु वंश में मेरी इज्जत लूटी जा रही थी। उस राजसभा में 40,000 लोगों के बीच में मुझे नग्न करने का प्रयास किया गया था, मैं तुम्हारी शरण में आई थी, तब तुम्हारा यह ज्ञान कहां गया था और आज आप ज्ञान दे रहे हो। तो पितामह भीष्म ने इतना ही कहा कि उस वक्त मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था और दुर्योधन के का अन्न खाने से मेरे शरीर में दुर्योधन का खून बह रहा था, लेकिन जब अर्जुन के बाणों से मुझे मेरे शरीर को विंध दिया गया और अर्जुन के बाणों से विंधने के कारण वो दुर्योधन का खाया हुआ सारा खून निकल गया, तब मेरा शरीर पवित्र हुआ और इसलिए मैं वेद और शास्त्र का ज्ञान दे रहा हूं। भगवान के भक्त और महाभागवत होने के बाद भी यदि कोई पाप करता है तो उसकी सजा तो भुगतनी है। पितामह भीष्म बहुत बड़े अपने नीति पर, अपने प्रतिज्ञा पर अड़ग थे और इसीलिए उसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, परंतु वे अधर्म का साथ दिए थे। भगवान की भक्ति के लिए, धर्म के लिए यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी भी पड़े तो तोड़ देनी चाहिए, परंतु पितामह भीष्म ने भगवान के लिए अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। पितामह के भीष्म के आगे दो ऑप्शन आया, धर्म का पालन करूं या प्रतिज्ञा का, तो उसने प्रतिज्ञा का पालन किया, भगवान की भक्ति पर जोर नहीं दिया, यद्यपि वे जानते थे। इसलिए पितामह भीष्म को इस प्रकार से कष्ट भुगतना पड़ा। दूसरी ओर आप देखिए, वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता, वसुदेव जी ने कंस को प्रतिज्ञा किया था कि मेरे जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको लौटा दूंगा, कंस से वादा किया था। और वसुदेव जी ने पहला पुत्र लौटा दिया, दूसरा, आठवां पुत्र जब जन्म लिया तो वसुदेव ने कंस को लौटाया नहीं? लौटाया। प्रतिज्ञा तोड़ दी क्योंकि कृष्ण ने कहा मुझे गोकुल छोड़ दो। वसुदेव जी ने भगवान के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी तो उनको कुछ नहीं हुआ, उसका यश बढ़ा। परंतु भीष्म पितामह ने भगवान के लिए अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी तो उसे मरना पड़ा। तो ये धर्म का साथ मुख्य है। इसलिए चाहे भक्ति करो या भक्ति में न हो, पाप तो करना ही नहीं। और गीता में जो भगवान का स्टेटमेंट है सर्वधर्मान परित्यज्य, तो जब तक व्यक्ति अज्ञान में है, कुछ नहीं जानता है और बहुत कुछ पाप कर चुका है, और जब उसे ज्ञान होता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तब जब वे भगवान के पास जाता है और तब तक के जो पाप है वो शमन हो जाते हैं। परंतु भक्ति में आने के बाद वो पाप नहीं होते। पूछिए, और ये सजा किस किस व्यक्ति के लिए क्या क्या सजा है, ये भागवतम के पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में पढ़ लीजिए। 28 प्रकार के नरक का वर्णन है, कौन व्यक्ति क्या करता है और उसकी कितनी पिटाई होती है, बहुत बहुत दुरूह वर्णन है। और इसका विस्तृत रूप में वर्णन गरुड़ पुराण में है। अरे महाराज परीक्षित के रोंगटे खड़े हो गए, कांप गए यह सुनकर कि इस संसार में कोई पाप करता है। और सब पाप छोड़ दीजिए, मांसाहार करना, शराब पीना, ये तो दूर की बात है। मैं एक चीज बताऊं, जिसके घर पे अतिथि आते हैं और कोई अतिथि का सत्कार नहीं करता है, उसे भी नर्क में जाना पड़ता है। तो समझ लीजिए और कितने कितने पाप की सजा क्या क्या होगी। ये कभी हम कथा करेंगे इसके बारे में, किस पाप की क्या सजा, किस नर्क में जाएगा, इसका बहुत विस्तृत वर्णन। तो सबसे पहले विवाह करने से पहले, मंगनी करने से पहले यह जानना चाहिए कि मैं किसी भक्त के साथ विवाह करूं। ये भागवत कहता है, भागवत यह शिक्षा देता है। मैं एक कथा आपको सुनाऊं, इस भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज मनु, और उस मनु से ही ये मनुष्य योनि प्रारंभ हुई, जो पूरे भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट थे। और उस मनु महाराज के 5 संतान थे, 3 लड़की और 2 लड़के, प्रियव्रत और उत्तानपाद पुत्र थे, और 3 लड़कियां थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो देवहूति भगवान की परम भक्त थी, एक राजा की पुत्री थी, परंतु देवहूति ने अपने पिता को कहा कि मुझे विवाह करना है तो भक्त से। उन्होंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, अंत में कोई ऐसा भक्त नहीं मिला। ब्रह्मा जी के पास गए कि हमारे पुत्री के लिए कोई भक्त पति ढूंढ कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा एक है, झोंपड़ी में रह रहा है, करदम, जाइए उसके पास। तो उस झोंपड़ी में गए, करदम ऋषि रह रहे थे, करदम ऋषि के साथ विवाह कराया। राजा राज परिवार में पलने वाली वह देवहूति झोंपड़ी में रहने वाले करदम ऋषि से विवाह किया। कंसीडर करना चाहिए भक्त के साथ, तो ध्यान रहे किसी भी स्त्री को चाहिए कि भक्त पति के साथ विवाह करे, ये सबसे पहली बात है। अब दूसरा पॉइंट है, विवाह यदि हो गया है अभक्त के साथ तो क्या करें। तो पहले तो यही है कि भक्त के साथ विवाह करें। यदि अभक्त के साथ विवाह हो गया है, पति चाहे कैसा भी हो, पति की सेवा करना ही धर्म है। लेकिन पति की सेवा करने के बाद जो समय बचता है, उस समय में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और इसमें भी बहुत बहुत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उपदेश है। यदि अपने पति को भक्त बनाना चाहते हैं तो पति को भगवान का प्रसाद खिलाओ, मंदिर लेकर जाओ, बहुत बहुत इसमें शिक्षाएं हैं। परंतु पहली बात तो यही है कि विवाह भक्त पति से कीजिए। और यदि आपको ऐसा करना है तो हमारे इस्कॉन में आपका नाम लिखा दीजिए, हम आपको ढूंढ कर देंगे। इस्कॉन यह भी फैसिलिटी देता है, और हमारे ही द्वारा पिछले 3-4 मंगनी हुई है। तो भक्त भक्त के साथ विवाह होना चाहिए। देखिए गृहस्थ जीवन कष्टमय है, गृहस्थ जीवन बिताना है तो दुख तो है ही, परंतु यदि भक्त आप दो भक्त मिलते हैं तो इसमें दुख नहीं है। यदि दो भक्त का विवाह नहीं होता है, मान लीजिए पत्नी भक्त और पति भक्त नहीं है, तो बहुत झगड़ा होता है, और दोनों अभक्त हैं तो भी झगड़ा होता है। क्योंकि पत्नी जो होती है वे किसी संस्कार, किसी परिवार, अलग देश स्थान में पली बढ़ती है, और पति कहीं और अलग जगह पर पड़ा है। दोनों साथ में मिलते हैं, दोनों के मन अलग अलग, दोनों के विचार अलग, सब कुछ अलग, और इसलिए आगे चलकर झगड़ा होता है। किसी को एमटीवी देखना है तो इसको वीटीवी देखना है, किसको ये होटल में जाना है तो किसको पति को यहां जाना है, पत्नी को ये खाना है पति को ये खाना है, झगड़ा होता है। लेकिन देखिए यदि दोनों भक्त के बीच में विवाह होता है तो भक्त का एक ही लक्ष्य है, भक्ति करना, कृष्ण को प्राप्त करना। तो लक्ष्य एक होने के कारण झगड़ा नहीं होता है, जीवन सुखमय बीतता है। तो भक्त पति और पत्नी ढूंढना चाहिए, और यदि अभक्त के परिवार में है तो प्रहलाद महाराज तो असुर परिवार में ही जन्म लिए थे, पिताजी असुर थे, माता सब असुरी थे, लेकिन उसके बीच में रहकर भी भक्ति किए तो करनी चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, तब हाँ, गीता जी के 15वें नहीं सभी अध्याय का महत्व है। गीता के एक एक शब्द, एक एक अक्षर का महत्व है। ऐसा नहीं है 15वें अध्याय 16वें क्या, किसमें शास्त्र में कहां लिखा है वो बताइए। शमशान में बोले चाहे कोई भी बोले, किसी के बोलने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं यह कह रहा हूं कि गीता के 15वें नहीं, गीता के 18वें 700 श्लोक, सभी श्लोक का महत्व है। कोई भी बोलो, गीता का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ लोग को 15 अध्याय अच्छा लगता होगा तो वो बोलते हैं। ये सब निकाल, ऐसा ही संसार में यही चल रहा है। किसी को अच्छा लगता है तो वो बोलते हैं तो लोग समझ लेते हैं यही मुख्य है। एक बात बताऊं आपको, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार ये जो वार रहते हैं व्रत, मुझे बताए कौन से शास्त्र में लिखा है? ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। ये तो गांव में कुछ लोग रहते थे, चार पांच जन रहते थे, अरे तुम भी रहती हो, मैं भी रहूंगी, मैं भी रहूंगी, ऐसे रहते 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 एक समाज बन गया। इसका मूल देखा जाए कहां लिखा है, किसने कहा है, कुछ नहीं। तो ये बस ये भेड़िया ढसान जिसे कहते हैं, जैसे भेड़ होता है बकरी और भेड़, पहली बकरी जैसे चलती है पीछे पीछे लाइन चली जाती है, पहली कुएं में गिर गई तो सारी बकरी कुएं में, बस यही चलता है संसार में। एक व्यक्ति गलत काम किया पीछे पूरा समाज और सब नरक में। संसार में गुरु पद ही, गुरु ही ऐसे बन गए हैं। गलत गुरु मिल जाते हैं, कुछ गलत बातें बताते हैं, गुरु तो नरक में जाएंगे, चेले भी नरक में। प्रहलाद महाराज कहते हैं अंधा यथांधे उपगीय माना, जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़कर आप इस समुद्र को पार करना चाहो, वैसे ही ऐसे गलत गुरु को पकड़कर संसार सागर पार नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान देना चाहिए, हमें वही बात को स्वीकार करना है जो शास्त्र में लिखा है। इसलिए मैं यहां पर कुछ भी बोलता हूं तो श्लोक के साथ बोलता हूं, तात्पर्य यही है कि मैं मेरा कुछ नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र में जो लिखा है वही सत्य है और वही पालन। ये कह रहा है वो कह रही है, अरे ये मूर्ख हो सकता है, क्यों माने इसकी बात? और व्यक्ति की बुद्धि कभी भी घूम सकती है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। अरे भगवत गीता को भी बिगाड़ के रख दिया, गीता नहीं बिगड़ी हुई है, गीता के ऊपर जो भाष्य लिखा है वे गीता के भाष्य अर्थ को बिगाड़ दिए। ब्राह्मणों जो ब्राह्मण थे उन्होंने लिखा कि गीता का सार है ब्राह्मणों को दान करो ताकि अपने बिरादरी वालों को दान मिले। तो डायरेक्ट शास्त्र क्या कहता है मूल को जानिए, और मूल यही है गीता के एक एक शब्द पादम। गीता के महात्म्य में लिखा है कि एक अक्षर भी कोई गीता का पढ़ता है तो वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा है क्योंकि गीता ग्रंथ नहीं है, गीता भगवान का रूप है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। ये और कोई प्रश्न है? ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल कर आए। वास्तव में समय बहुत कीमती है और ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपनी, कुछ लोग अपने पति को छोड़कर आए होंगे, कुछ अपनी पत्नी को छोड़कर महात्याग करके आए हैं, कुछ अपने पुत्र को छोड़कर। एक बात बताओ, ये सबसे बड़ा महात्याग क्या है पता है? टीवी को छोड़कर आप आए हो। और सब तो छोड़ ही छूट ही जाता है, पर तो टीवी को छोड़ना बहुत, और सोच में भी सास कभी बहू थी और ये थी वो थी, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप सब बहुत बड़े तपस्वी हो, कलयुग में यही तपस्या है। हरे कृष्ण।